मित्रों, आज पुनः रविवार है। मैं लीना महेंद्रे अपने कार्यक्रम पठामी संस्कृतम के साथ उपस्थित हूँ। आप सबका स्वागत है इस रेडियो मधुबन के श्राव्य मंच पर। पिछले रविवार को हमने पंडित जयदेव रचित गीत गोविंद के दशावतार के श्लोकों के विषय में पढ़ाई आरंभ की थी। आज उसी को आगे ले चलते हैं। मित्रों, यह माना जाता है कि पंडित जयदेव 12वीं 13वीं सदी के बीच में कभी उनका जन्म हुआ था और उत्कल प्रांत में अर्थात ओडिशा में उनका जन्म हुआ था और वे अतिशय प्रतिभावान कवि थे, तो उनकी कई रचनाएं अत्यंत विलोभनीय, अति सुंदर और मधुर छंद में निबद्ध हैं। उन्हीं में से एक है गीत गोविंद, जिसमें दशावतारों का वर्णन है और दशावतार के इन 12-13 श्लोकों को अष्टपदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हर श्लोक में 8 पद या 8 शब्द हैं। अर्थात संस्कृत की जो विशेषता है उसके अनुरूप कोई शब्द अगर संधि और समास के साथ हो तो वह बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन कवि की प्रतिभा का दर्शन भी वहीं हमें मिलता है। तो ऐसे पंडित जयदेव कवि द्वारा रचित दशावतार के श्लोकों में से पहले 3 श्लोकों को हमने पिछले रविवार को सुना और आज हम उसके आगे चलते हैं। कवि यहाँ पर नरसिंह अवतार का वर्णन करते हैं। तो कविवर्य श्री जयदेव लिखति, तव कर कमलवरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपुतनुभृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मित्रों, पिछले रविवार को हमने श्री जयदेव कवि के द्वारा वर्णित दशावतार काव्य से पहले 3 अवतारों के विषय में पढ़ा। हमारे धर्म में यह मान्यता है कि समय समय पर विष्णु ने पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए और धर्म को दृढ़ करने के लिए अवतार लिया। जो हम त्रिमूर्ति गिनते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें ब्रह्मा और महेश के द्वारा अवतार लिए गए हों ऐसा प्रायः नहीं है। माना जाता है कि शिव के अवतार हैं हनुमान जी और कहीं कहीं पर शिव के दूसरे अवतारों का वर्णन भी मिलता है, जैसे गोवा में मंगेश और महाराष्ट्र के जेजुरी में खंडेराय। इस तरह के कतिपय शिव के अवतारों का वर्णन मिलता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने कई बार अवतार लिए ताकि पृथ्वी को और पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों को कष्टों से बचाया जाए और धर्म की स्थापना को दृढ़ किया जाए। तो ऐसे 10 अवतार सर्व प्रमुख माने जाते हैं जिनका वर्णन श्री जयदेव ने अपने इस काव्य में किया है। तो पहले 3 अवतार थे मत्स्य अवतार अर्थात मछली का अवतार, कूर्म अवतार अर्थात कछुए का अवतार और शुकर अवतार अर्थात वराह का अवतार। वराह यानि विशाल जंगली सुअर जो कि अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अब इसके आगे हम चौथे अवतार का वर्णन देखते हैं जो कि नरसिंह अवतार है। नरसिंह अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है। तो नरसिंह अवतार के पीछे एक कथा है कि जब विष्णु ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और उसके अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई, तब भी पृथ्वी के मनुष्यों का दुख अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु वह सिंहासन पर बैठा और वह भी उतना ही क्रूर शासक था। लेकिन संयोग ऐसा कि स्वयं उसका बेटा, जिसे हम भक्त प्रह्लाद के नाम से जानते हैं, वह अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत समझदार और विष्णु का परम भक्त निकला। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किए कि प्रह्लाद को विष्णु की भक्ति से विन्मुख किया जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। तो उसने प्रह्लाद को मरवाने के लिए तरह तरह के आदेश दिए, जैसे कि उसे जल में फेंका जाए, उसे समुद्र में फेंका जाए, या उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए, या उसे अग्नि में जलाया जाए। लेकिन हर समय पर विष्णु ने उसकी रक्षा की। इस बात से हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और प्रह्लाद को उसने भरे दरबार में ललकारा कि आखिर यह तुम्हारा विष्णु जिसका तुम ध्यान लगाते हो, वह है कहाँ, वह कहाँ रहता है? तो प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि वह चराचर में व्याप्त है, सजीवों में, निर्जीवों में, हर जगह, हर कण में वह व्याप्त है। और हिरण्यकशिपु ने पहले कभी घोर तपश्चर्या करके ब्रह्मा से एक वर लिया था कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में हो, ना रात में हो, ना पृथ्वी पर हो, ना जल में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना मनुष्य के द्वारा हो, ना किसी पशु के द्वारा हो। और इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु बहुत ही प्रबल और अजेय बन चुका था, जिसके कारण वह बहुत घमंडी भी हो गया था। तो जब प्रह्लाद ने कहा कि विष्णु तो चराचर में व्याप्त है, तो हिरण्यकशिपु का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने अपने दरबार के एक खंभे को दिखा करके पूछा कि क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे के अंदर भी है? प्रह्लाद ने कहा हाँ है। तो हिरण्यकशिपु ने उस खंभे पर एक जोर से लात मारी, जिससे वह खंभा टूट गया। लेकिन उसी खंभे से विष्णु भी प्रकट हुए और वह नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का था। तो ना तो वह पशु थे, ना तो वह मनुष्य थे। और यह सायंकाल का समय था, जबकि ना तो दिन था, ना रात थी। और उस नरसिंह ने भयानक रौद्र रूप धारण करते हुए हिरण्यकशिपु को सिंहासन से खींच करके अपनी जंघा पर बिठा लिया। तो यहाँ ना तो जल था, ना भूमि थी, बल्कि नरसिंह की जंघा थी। और उसकी मृत्यु किसी शस्त्र या अस्त्र से नहीं हो सकती थी, परंतु चूंकि नरसिंह के पंजे सिंह के थे, तो उस नरसिंह ने अपने नाखूनों से ही हिरण्यकशिपु का पेट विदीर्ण करते हुए उसका वध किया। तो यह कथा है भक्त प्रह्लाद की और हिरण्यकशिपु को परास्त करने की और इस प्रकार उसके अत्याचारों को समाप्त करने की। इस काम के लिए विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। इसी कथा को श्री जयदेव कवि ने अपने चौथे श्लोक में पिरोया है। तो क्या कहते हैं श्री जयदेव? तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम। अर्थात तुम्हारे जो कर कमल हैं, अर्थात कमल के समान जो तुम्हारे हाथ हैं, उनके जो नख थे उनमें अद्भुत तीक्ष्णता थी, अद्भुत श्रृंगम, उनके अग्रभाग में अद्भुत तीक्ष्णता थी, जिस कारण हिरण्यकशिपु का पेट विदीर्ण हो पाया। और दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, और इन नखों के कारण दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, तो हिरण्यकशिपु के शरीर का आपने निर्दालन कर दिया। दलित अर्थात उसका निर्दालन कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। और भृंगम, तो भृंगम अर्थात भ्रमर, भंवरा। तो यहाँ पर उपमा के रूप में भ्रमर शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रायः तो भंवरा ही कमल की पंखुड़ियों पर बैठ करके उन्हें क्षति पहुँचाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि तुम्हारे कर कमलों की तीक्ष्णता ने हिरण्यकशिपु के शरीर रूपी भंवरे को ही परास्त कर दिया, उसका निर्दालन कर दिया। तो इस प्रकार हे केशव, तुमने नरहरि का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिया। तो धृत नरहरि रूप ये भी संबोधन हो गया, जगदीश संबोधन है, हरे भी संबोधन है, केशव ये भी संबोधन है। तो हे केशव, हे धृत नरहरि रूप, हे जगदीश, हे हरे, तुम्हारी जय हो। तो मित्रों, यह हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा काफ़ी विस्तार से मैंने बताई, लेकिन इसी के साथ अब हमारा समय समाप्त हो गया। तो आज मैं यहाँ विराम लेती हूँ। अगले रविवार को अगले श्लोकों के विषय में पढ़ेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।